समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
Good morning, friends. As we step into 2026, a new year unfolds with fresh purpose and renewed expectations. It is a moment to look ahead with confidence, guided by experience and shaped by hope. Across the nation and beyond, people begin the year with aspirations for progress, stability, and meaningful change. The beginning of a new year is also a time for reflection and resolution. It is a moment to pause, to learn from the year gone by, and to set intentions for the days ahead. Intentions rooted in responsibility, cooperation, and collective well-being. So, cheers to a brand new year to you, Devendra, my co-host, and all our lovely listeners.
Ji, Varsh Nav Harsh Nav Jeevan Utkarsh Nav Nav Umang Nav Tarang Jeevan Ka Nav Prasang Naval Chah Naval Rah Jeevan Ka Nav Pravah गीत नवल प्रीति नवल जीवन की रीति नवल जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ सभी सुनने वालों को और सुभद्रा आपको भी ग्रेगरियन कैलेंडर 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, भारत सहित दुनिया भर में अनेकों कैलेंडर प्रचलन में है, लेकिन ये सौर कैलेंडर यानी सोलर कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक मान्य है। अपने श्रोताओं को बता दें कि ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर का संशोधित रूप है। जूलियन सीजर ने 45 ईसा पूर्व जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसकी गणनाओं में त्रुटियां थी, और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए 16वीं सदी के कैथोलिक चर्च के प्रमुख और पोप राज्यों के शासक पोप ग्रेगरी ने 1582 में 4 अक्टूबर को ग्रेगरियन कैलेंडर लागू किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 4 के बाद 5 अक्टूबर नहीं आया, बल्कि त्रुटि के 10 दिन हटा दिए गए और आई अगली तारीख 15 अक्टूबर की, और इस प्रकार वर्तमान कैलेंडर अस्तित्व में आया। इसे नई शैली यानी न्यू स्टाइल और जूलियन कैलेंडर को पुरानी शैली यानी ओल्ड स्टाइल का कैलेंडर कहा जाता है।
So, lots of joy, laughter, happiness, along with good health and luck throughout the year. So, get ready, listeners, for our very first edition of Art Savari for the brand new year, 2026. Devendra?
Ji, aur shuruaat karte hain is edition ki mukhya samacharon ke saath. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला सहित विभिन्न क्षेत्रों की 5 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएं 5 राज्यों से जुड़ी हैं और इनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रूपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रगति के नेतृत्व वाले पारिस्थितिकी तंत्र ने 85,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की गति प्रदान करने में मदद की है। उन्होंने राज्यों को मुख्य सचिव स्तर पर विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रगति जैसी व्यवस्थाओं को संस्थागत रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में काफी समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। पीएमश्री योजना की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमश्री योजना को समग्र और भविष्य के लिए तैयार स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मानक बनना चाहिए। उन्होंने सभी मुख्य सचिवों से पीएमश्री योजना की बारीकी से निगरानी करने को कहा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पीएमश्री स्कूलों को राज्य सरकारों के अन्य स्कूलों के लिए एक मानक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पीएमश्री स्कूलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जमीनी स्तर पर दौरा करना चाहिए।
Government has notified February 1 as the date from which additional excise duty will be levied on tobacco products and a new cess on pan masala. The new levies on tobacco and pan masala will be over and above the GST rate and will replace the compensation cess which is currently being levied on such sin goods. From February 1, pan masala, cigarettes, tobacco and similar products will attract GST rate of 40%, while bidis will attract 18% goods and services tax, GST. On top of this, a health and national security cess will be levied on pan masala, while tobacco and related products will attract additional excise duty. Parliament had in December approved two bills allowing levy of the new health and national security cess on pan masala, manufacturing and excise duty on tobacco. External Affairs Minister S. Jayashankar represented India at the funeral of former Prime Minister Khalida Zia and handed over to Bangladesh Nationalist Party leader Tariq Rehman a letter of condolences from Prime Minister Narendra Modi. In his meeting with Mr. Rehman, Dr. Jayashankar expressed confidence that Zia's vision and values will guide the development of partnership between the two nations. Mr. Rehman, currently serving as the acting chairman of BNP, is the eldest son of Khalida Zia. She died in Dhaka on Tuesday following a prolonged illness. In his letter, Mr. Modi warmly recalled his meeting and discussions with Khalida Zia during his visit to Dhaka in June 2015, adding she was a leader of rare resolve and conviction. PM Modi said she made many important contributions to the development of Bangladesh as well as to the strengthening of India-Bangladesh relations.
दुनिया भर में नववर्ष 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। नववर्ष 2026 सबसे पहले प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देश किरीबाती में मनाया गया। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टॉवर पर शानदार आतिशबाजी की गई। समोआ, टोंगा और टोकेलाउ सहित अन्य प्रशांत देशों में भी नए साल की शुरुआत का जश्न मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी आतिशबाजी की गई। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान, हांगकांग, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अन्य मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देशों, रूस और तुर्की सहित कई देशों में लोगों ने पारंपरिक उत्सवों और हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया।
Getting to some sports news now. SG Pipers put in a composed and disciplined performance to edge past JSW Surma Hockey Club 1-0 in a tightly contested Women's Hero Hockey India League encounter in Ranchi yesterday, with the Pipers captain Avneet Kaur's early strike proving decisive as the table toppers registered their second consecutive victory. The Pipers began on a disciplined note, moving the ball with pace and purpose, and the intent was rewarded early in the contest.
और 44वीं राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप कल बेंगलुरु के गंजूर में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शुरू हुई। प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 1000 युवा लड़के और लड़कियां अलग अलग श्रेणियों में चुनौती पेश करेंगे। कल लगभग 40 मैच खेले गए। प्रतियोगिता लीग और नॉकआउट प्रारूप में होगी। सेमीफाइनल 3 जनवरी को और फाइनल मुकाबला 4 जनवरी को खेला जाएगा। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री एच नागेश ने किया। इस अवसर पर भारतीय खो खो संघ और कर्नाटक खो खो एसोसिएशन के सदस्य भी उपस्थित रहे। भारतीय खो खो संघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को सीखने और आगे बढ़ने का मौका प्रदान करेगी। कर्नाटक खो खो संघ के प्रेसिडेंट लोकेश्वर ने कहा कि प्रतियोगिता उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा 58वीं सीनियर खो खो चैंपियनशिप 11 से 15 जनवरी के बीच तेलंगाना के काजीपेट में आयोजित होगी और 35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 31 जनवरी से 4 फरवरी तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खेली जाएगी। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अन्य नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे, और अब हम आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं महानगरों से जुड़े कुछ प्रमुख समाचार।
यस देवेंद्र, स्टार्टिंग न्यूज विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। ऑल ई सेवा सेंटर्स एंड आधार एनरोलमेंट सेंटर्स अक्रॉस तमिलनाडु वर शट डाउन ड्यू टू सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड ऑडिट वर्क। It will remain closed today also. This was announced by the Tamil Nadu Arasu Cable TV Corporation that operates these kendras. Officials said the temporary shutdown is necessary to improve the system performance and service efficiency. The corporation has clarified that all e-seva and Aadhaar centres will resume normal operations from tomorrow. Citizens planning services such as Aadhaar enrollment or updates, income and community certificates and other government services are advised to visit the centres after the maintenance period. We have another news from Chennai. The 150th International Convention of Theosophical Society began yesterday, will continue till January 4 at its international headquarters in Chennai. The Theosophical Society is a global spiritual organization with members from more than 60 countries, representing diverse religions, races and backgrounds. Founded in New York in 1875, it established its world headquarters in Adyar, Chennai in 1882. Around 700 delegates from India and several other countries are expected to take part in the event at the Society's campus in Adyar. The five-day convention will see a series of public lectures addressing contemporary global issues. Getting to Bengaluru now, Karnataka Governor Thavarchand Gehlot felicitated three women blind cricketers from Karnataka in Bengaluru yesterday. Captain of the Indian women blind cricket team, Deepika TC, and her teammates Kavya V and Kavya NR were honoured by the Governor for their remarkable performance at the SBI First Women T20 World Cup for the blind cricketers. The Indian team had brought home the World Cup. Each player was presented a cash award of 51,000 rupees each, along with mementos. The chairman of the Cricket Association for the Blind in India, Dr. Mahantesh G. Kivadasanavar, was present on this occasion. Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil has requested the Union Health Minister J.P. Nadda in a letter to establish a unit of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research in Karnataka. He has assured that the state government will provide the necessary land, infrastructure and other support to set up the institute in the state. He has drawn the attention of the central government towards the strong ecosystem that exists in Karnataka in the areas of research and biotechnology companies. Bengaluru alone is home to over 400 biotechnology companies. Hyderabad News now, the Telangana state government has announced a series of service and gallantry awards for personnel from the police, fire services, anti-corruption bureau and vigilance and enforcement departments. The honours include the Telangana Saurya Patakam, Telangana Mahonata Patakam, Telangana Mahonata Seva Patakam, Telangana Uttama Seva Patakam, Telangana Katina Seva Patakam and Telangana Seva Patakam. Seven police personnel were awarded the Telangana Shaurya Patakam for acts of bravery. 16 personnel received the Telangana Mahonata Seva Patakam. A total of 94 police personnel were honoured with the Telangana Uttama Seva Patakam, 53 with the Telangana Katina Seva Patakam and 549 with the Telangana Seva Patakam. And Devendra, over to you for rest of the news now, Metro.
जी, दिल्ली और मुंबई तथा कोलकाता की खबरें अगर हम देखें तो सबसे पहले दिल्ली के समाचार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना, मामूली उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अदालती मामलों में कमी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह विधेयक 5 जनवरी से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में केवल 8 दिन ऐसे रहे जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से अधिक खराब श्रेणी में पहुंची और वर्ष 2018 के बाद ऐसा दूसरी बार हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2025 में सभी लोगों के लगातार मिलकर किए गए प्रयासों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में और सुधार हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि इससे साफ है कि वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 79 दिन ऐसे रहे जब AQI 100 या उससे कम था, जो सिर्फ कोविड वाले वर्ष 2020 से कम है। दिल्ली में बिजली आपूर्ति को विश्वसनीय और सतत बनाने के लिए सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए लगभग 17,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। एक बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और डिस्कॉम पारेषण लाइन, ग्रिड, सब स्टेशन और वितरण नेटवर्क को सशक्त किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि राजधानी में राइड शेयरिंग और कार पूलिंग की सुविधा फिर से शुरू की जाएगी। दिल्ली सचिवालय में कई निजी टैक्सी कंपनियों के साथ बैठक में श्री सिरसा ने 1 महीने के भीतर राइड शेयरिंग सुविधा पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए। चलते हैं मुंबई, जहां आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान वार्ड 211 और 12 से भाजपा के 2 उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए गए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक कुल 2516 नामांकन पत्र जमा किए गए थे। जांच के बाद कई नामांकन विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए। खारिज किए गए नामांकनों में से अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवारों के थे। हालांकि निर्दलीय और भाजपा के अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों के नामांकन भी खारिज किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने सभी बस डिपो, बस स्टैंड परिसर और प्रशासनिक भवनों में हर 15 दिन में एक बार व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर सुविधाएं प्रदान करना और साथ ही राज्य सड़क परिवहन सेवा की सकारात्मक छवि को मजबूत करना है। कचरे के उचित प्रबंधन के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कचरे का पृथक्करण और वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित होगा। और सुभद्रा, मुझे लगता है कि हम सभी को एक नागरिक के तौर पर ये जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और साफ सुथरा सुंदर रखने के लिए
Yes, civic sense is very important.
और जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, जो लक्ष्य लेकर चल रही हैं, उनमें हम उनका सहयोग भी करें और अपनी भी जिम्मेदारी हम ठीक ढंग से निभाएं।
Yes, of course.
जी, चलते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के अंतर्गत चुनाव आयोग ने राज्य भर में कई आवासीय परिसरों में मतदान केंद्र स्थापित करने की योजना शुरू की है। 100 से अधिक आवासीय परिसरों को इन बूथों के लिए संभावित स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। मंगलवार को वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में 8 जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी विभाग के अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये बात सामने आई। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि ये आंतरिक मतदान केंद्र पारंपरिक बूथों के समान ही बुनियादी ढांचे और आकार के मानकों का पालन करेंगे। हालांकि स्थानों की अंतिम सूची एक सप्ताह के भीतर जारी होने की संभावना है। राजनीतिक दलों की संभावित आपत्तियों के बावजूद मतदाताओं की सुविधा और अधिक मतदान को प्राथमिकता दी गई है। महानगरों के समाचार हमने जाने और अब जानते हैं महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात, जहां आज कोहरे से कुछ राहत मिली क्योंकि आसमान में बादल थे। और सुभद्रा, हम सभी जानते हैं कि जब बादल होते हैं तो कोहरा थोड़ा कम रहता है।
And also the pollution level comes down, yes, when it's cloudy.
और सुबह पंजाबी बाग सहित कुछ स्थानों पर हल्की, बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री रहने की संभावना है। दिन में यानी दोपहर के पहले तक हो सकता है कि थोड़ी बहुत बरसात दिल्ली में और भी हो जाए। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश नहीं होगी, धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में सुबह धुंध रही और बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा सुभद्रा?
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 18 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad is expected to have fog mist in the morning and partly cloudy sky will be seen later on. The minimum temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 30 degrees Celsius.
और मौसम के बाद अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं 1 जनवरी के दिन कुछ ऐसी घटनाएं क्या घटी जो इतिहास का हिस्सा बनी। आज 1 जनवरी 2026 है। आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1862 में लागू किया गया। इसे ब्रिटिश हुकूमत ने लागू किया था जो औपचारिक विरासत था, औपनिवेशिक विरासत था।
Yes.
और इसे 2023 में भारत सरकार ने समाप्त कर दिया और इसका स्थान लिया भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है।
Yeah, going back a little in time, 1801, Ireland was added to Great Britain by an act of union, thus creating the United Kingdom of Great Britain and Ireland. And 1863, this day, U.S. President Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation, marking a major step toward ending slavery in America.
जी, और देश में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में आज ही के दिन हुई थी।
In 1901, the Commonwealth of Australia was founded as 6 former British colonies became 6 states, with Edmund Barton as the first Prime Minister.
जी, और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को 1906 में लागू किया था आज ही के दिन।
In 1915, Mahatma Gandhi was awarded the Kesari Hind by the Viceroy for his work in South Africa. In 1942, this day, 26 countries signed the Declaration of the United Nations in Washington, D.C., reaffirming their opposition to the Axis powers and confirming that no single nation would make a separate peace.
जी, आजादी के बाद कश्मीर में शुरू हुए संघर्ष के बाद 1949 में युद्ध विराम की घोषणा की गई थी. और
एंड 1972 द टाइगर वाज चोजन एज द नेशनल एनिमल एंड आल्सो द सेम ईयर कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी वाज अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड.
जी, और विश्व व्यापार संगठन 1995 में आज ही के दिन अस्तित्व में आया. इसने 1948 से लागू GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का स्थान लिया. इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, व्यापार बाधाओं को कम करना और व्यापार विवादों को हल करना. विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. और अब स्मरण उन महान व्यक्तियों का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. श्रोताओं, सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर को जिनकी आज पुण्यतिथि है. शांति स्वरूप भटनागर औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक रहे. उन्होंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में अमूल्य योगदान दिया. शांति स्वरूप भटनागर ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में 1921 में विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत लौटने के बाद उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर के पद पर कार्य किया. विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान स्वरूप 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. शांति स्वरूप भटनागर का निधन 1 जनवरी 1955 में हुआ था. शांति स्वरूप भटनागर की मृत्यु के बाद CSIR ने विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को सम्मान देने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की.
टॉकिंग अबाउट साइंस, फिजिसिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स सत्येंद्रनाथ बोस टुक बर्थ दिस डे इन 1894. He collaborated with Albert Einstein in developing a theory regarding the gas-like qualities of electromagnetic radiation, which is also called Bose-Einstein statistics. And also, this day in 1942, birth anniversary of American biomedical physicist who helped create the PET scanner, that is positron emission tomography, which is used to detect cancers and other diseases.
जी. और आज जयंती है राहत इंदौरी की. इंदौर में जन्मे राहत इंदौरी ने मुशायरों में खूब वाहवाही बटोरी. साथ ही बॉलीवुड के लिए भी उन्होंने कई गाने लिखे. मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में PhD उपाधि प्राप्त की. बॉलीवुड में उनकी जोड़ी अन्नू मलिक के साथ हिट रही. 1994 में आई फिल्म खुद्दार सहित कई फिल्मों के लिए उनके लिखे गाने लोकप्रिय रहे. कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में आपको सुनवाते हैं ये गाना, उसके बाद उनका एक शेर आपके लिए पढ़ूंगा.
तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है.
लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है. तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है.
श्रोताओं, ये गाने, ये ऐसे बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे जो लोकप्रिय हुए, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी शायरी से थी जिसमें उनकी संजीदगी झलकती है. एक शेर उन्होंने लिखा था जिसे बहुत लोकप्रिय माना जाता है. सर पर सात आकाश जमी पर सात समंदर बिखरे हैं, आंखें छोटी पड़ जाती हैं इतने मंजर बिखरे हैं. जिंदा रहना खेल नहीं है इस आबाद खराबे में, वो भी अक्सर टूट गया है, हम भी अक्सर बिखरे हैं. उस बस्ती के लोगों से जब बातें की तो ये जाना, दुनिया भर को जोड़ने वाले अंदर अंदर बिखरे हैं. इन रातों से अपना रिश्ता जाने कैसा रिश्ता है, नींदें कमरों में जागी हैं और ख्वाब छतों पर बिखरे हैं. आंगन के मासूम शजर ने एक कहानी लिखी है, इतने फल शाखों पे नहीं थे जितने पत्थर बिखरे हैं. सारी धरती सारे मौसम एक ही जैसे लगते हैं, आंखों आंखों कैद हुए थे मंजर मंजर बिखरे हैं.
Beautiful. And friends, today is the death anniversary of the legendary Hank Williams, American singer, songwriter, guitarist, who in the 1950s arguably became country music's first superstar. An immensely talented songwriter, impassioned vocalist, he also experienced great crossover success in the popular music market. He has a big hit. This is called Jambalaya.
Joe, me gotta go, me oh my, me gotta go, pull the P-Road down the bayou.
my Yvonne, the sweetest one, me, oh my, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, and a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick it tough, fill
भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता असरानी की आज जयंती है। अपने समय की सुपरहिट फिल्म शोले में निभाए उनके जेलर के किरदार में उनके डायलॉग बहुत चर्चित रहे। 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े अभिनेताओं और निर्देशकों के साथ काम किया और अभी भी उनका अभिनय दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाला होता है। उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की लेकिन जितनी भी फिल्मों में काम किया उसमें अपने अभिनय को यादगार बना दिया। असरानी ने 1967 में हरे कांच की चूड़ियां फिल्म में से इंडस्ट्री में कदम रखा था और चुपके चुपके के प्रशांत, अभिमान के चंद्रू, बावर्ची के बाबू और छोटी सी बात के नागेश के तौर पर उन्होंने अपने अभिनय, गंभीर अभिनय को भी दर्शकों के समक्ष पेश किया। लेकिन शोले का ये डायलॉग आपको सुनवाना जरूरी है।
हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले।
And friends, today is the birth anniversary of Mill Jackson, one of the all-time jazz greats on the vibraphone. Born on Jan 1 in Detroit, Michigan, this great innovator brought this esoteric instrument to the bebop jazz revolution and made it popular. As part of modern jazz quartet, he thrilled fans with his blues and ballads. You're listening to a track called Bag's Groove. Today is also the birthday of Italian-American actor Frank Langella. A stage and screen actor of extreme versatility, Frank won acclaim on the New York stage in Seascape and followed it up with the title role of the Edward Gorey's production of Dracula. He repeated the role for the screen in Dracula in 1979 and became an international star, and he also played the role of Skeletor in Master of the Universe.
जाने माने फिल्म अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्माता नाना पाटेकर का आज जन्मदिन है। उनके अभिनय के सभी कायल हैं। कई बार उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ खलनायक की श्रेणी में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले वे एकमात्र अभिनेता हैं। श्रोता, उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। फिल्म जगत में अपनी विशेष संवाद अदायगी के चलते नाना की एक अलग पहचान बनी, तो क्यों ना उनका एक डायलॉग हो जाए।
कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे जिंदा लाशें, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया?
श्रोताओं, बहुत सारे दर्शक लोगों को नहीं पता है कि कारगिल वॉर में भी भारतीय सेना जब पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी तो इस जंग में बॉलीवुड के शानदार एक्टर नाना पाटेकर भी शामिल हुए थे।
And friends, a world-class soloist, accompanied composer, formidable band leader, saxophonist Chris Potter, the modern saxophone great, celebrates his birthday today. This tenor legend remains one of the most impressive jazz musicians to have emerged in the last 30 years. So friends, let us remember that today is a very special day, new year, a golden chance to start afresh. Forget the past mistakes and march ahead with positive thoughts. Devendra?
जी, एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को, सभी देशवासियों को आकाशवाणी परिवार की ओर से नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
On that note, we conclude this edition of Aaj Savere, but then, you know, you guys stay tuned. For coming up now is Samachar Prabhat, the Hindi News Bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day. Namaskar.